यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 9 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणु गीत सप्ताह के अंतर्गत 4 मई की सायंकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ।
हृदयं कुशलं स्वेणुः दामोदराधर सुधामति गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जगवशिष्ठरसं हृदिन्यो वृंदावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं जगदेवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मी प्रेक्षादृशान्वपरतान्य समस्त सत्त्वान्
अहो बतास्तुतरं गोपानां भाग्यं वेणुरपि भाग्यं किं वक्तव्यम् इति महाभाव स्फृत उन्मादतया मिथ्या कल्पना पूर्वकं स ईर्ष्याभिलाषमाहि लोक्यते। अहो बत अस्तुतरं गोपानां भाग्यं हे सखियों हे गोपियों, गोपों के कृष्ण सखाओं के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। वेणुरपि भाग्यं किं वक्तव्यं, वेणु के भाग्य का क्या कहना है। जड़ वेणु कितना भाग्यशाली है इस पर विचार करो। महाभाव के कारण स्फुरित होते हुए उन्माद के कारण वासुवी में ही व्यक्ति की कल्पना करके और मिथ्या कल्पना है यह, और इस प्रकार ईर्ष्या के साथ अपने अभिलाषा व्यक्त करो। वेणु से ईर्ष्या हो गई। महाभाव अर्थात परम उच्च कृष्ण कृति का लक्षण है, कृष्ण से संबंधित किसी भी वस्तु में बहुत सौभाग्य की कल्पना होती है। जड़ पदार्थ में शुष्क बांस में ऐसी भावना हो गई है, हो रही है कि यह मेरी शौक बन गई है, राधा रानी की भावना है चाहे अन्य किसी भी गोपी की, तो वेणु के साथ ईर्ष्या हो रही है। सबसे पहले संबोधन है गोप्य हे गोपियों, इसके द्वारा माननीय राधा रानी यह कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण गोप हैं और तुम लोग गोपी हो, तो श्री कृष्ण के संबंध में जो भी रस है जैसे उनका आग्रह इत्यादि उस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। तुम गोपी हो, कृष्ण गोप है, अन्य किसी का भी उस पर अधिकार नहीं है क्योंकि देवता आदि सब मनुष्य से विजातीय है और मनुष्यों में भी कई जाति के मनुष्य हैं। तो कृष्ण पर अगर किसी किसी का अधिकार है तो गोपियों का, क्योंकि कृष्ण गोप है। संबोधन का अर्थ हुआ अयम वेणु किम कुशलम आचरत, इस वेणु ने क्या तप किया है, क्या सुकृत किया है, कौन सा पुण्य किया है, क्यों कैसे पूछ रहे कि क्या पुण्य किया है, पुण्य का कोई लक्षण है क्या इसमें। हाँ जब गदाधर सुधा भूखते, यह दामोदर के अधर सुधा को भोग रहा है, यही इसके पुण्य का लक्षण। बिना पुण्य के, बिना सुकृत के कृष्णा 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 धरामृत प्राप्त नहीं हो सकता। अपि गोपिका नाम, जो गोपिकाओं का है उसको यह पी रहा। देव पुलिंग है इसलिए पुलिंग में बोला जाना। कल कभी साथ हम बांसुरी भी कह देंगे तो उसका अर्थ समझना चाहिए। देव देव कहने पर बांसुरी। श्री कृष्ण का अधरामृत गोपियों का है। अपि का अर्थ यद्यपि, दामोदराधर सुधाम गोपिका नाम, गोपिका नाम एवं दामोदराधर सुधाम, जिस कृष्ण के अधरामृत पर गोपियों का अधिकार है उसको भूखते, यह भोग रहा है, वेणु पी रहा है। और स्वयं, स्वयं का दो अर्थ है, एक तो अकेले भोग रहा है और किसी को बांट नहीं रहा है, तो स्वयं भूखते। अथवा स्वयं का अर्थ है बिना गोपिकाओं के, तुम लोगों की अनुमति के भोग रहा है, स्वयं भोग रहा है, पूछा भी नहीं। और सखी चुपचाप भोग लेकर तब भी दुख की बात नहीं है, भोग भोग करके डकार छोड़ रहा है, ये फुटकार नहीं है, इसकी डकार है। और ये कभी कभी बोल रहा है कि गोपियों तुम क्या कर सकती हो हमारे, हम तुम्हारा धन लूट रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसे बोलते थे बांसुरी में, तो गोपियों को ऐसा अनुभव होता था कि देवड़ बोल रहा है। जिन हरदिनियों के तट पर वेणु उगा है, इसका वंश उगा है। हरदिनी के दो अर्थ हैं, एक तो ह्रद जिसमें है, नदियों में बीच बीच में ह्रद होता है, तो इसलिए उनको हरदिनी कहते हैं। ह्रद का अर्थ दह, दह वाली, जो लोग देखे हैं नदी को बीच बीच में ह्रद बन जाते हैं, उनको हरदिनी कहते हैं। और जहां दह होता है उसके तट पर बांस उगते हैं, वेणु उगता है। अथवा हृदयी का अर्थ होता है ह्रद की पत्नियां, जो ह्रद है, छोटे छोटे सरोवर को भी ह्रद कहा जाता है, छोटे छोटे सरोवर को हृदयी कहा जाता है और बड़े बड़े सरोवर को ह्रद कहा जाता है। हृदयियां वेणु द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट रस को पी करके, और ये बहुत प्रसन्न है, भूखते स्वयं जद अवशिष्ट रसम हृदय हिस्सक त्वच श्रीमुस्तव जथा रहे, हृदयों को रोमांच हो रहा है। हिस्सक त्वच, देखो तलाइयों को, नदियों को रोमांच हो रहा है, क्योंकि इनके तट पर बांस उगा है और उसी बांस का वेणु बना हुआ है। ये संबंध मिलाकर के हर्षित हो रहे, कमल आदि खिले हैं हृदयों में, इसलिए कह रहे हैं कि रोमांच हो रहा है, खुशी है। संबंध जोड़कर वेणु कृष्ण का भक्त हो गया है और हमारे तट पर उत्पन्न हुए बांस का पुत्र है, इसलिए हम धन्य। अथवा हृदयनिया कृष्ण के अधरामृत को पीती है, वो इस तरह से सारा रस तो वेणु पी गया है, राधारानी कहने का भाव ये है, लेकिन थोड़ा सा बचता है तो कृष्ण जाते हैं हृद में, आचमन करते हैं और पीते हैं और अवगाहन करते हैं। जब उसमें तो स्वाभाविक ही अधर भी पानी में डूबता ही है, तो वेणु द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को हृदयनिया पी करके इतना हर्षित, रोमांच हो रहा है। और ये वृक्ष तरव, ये सोचते हैं कि वेणु हमारी जाति का है, वृक्ष जाति का है, तो ये लोग भी आंसू बहा रहे, प्रेम में आंसू बहा रहे, जैसे आर्ज भक्त। आर्ज का अर्थ है भगवत भक्त, जैसे भक्तों के महान पुरुषों के परिवार में कोई भगवत सेवक जन्म लेता है तो ये लोग आनंद में आंसू बहा रहे। सारे वृक्षों में, सारे वृक्ष रो रहे हैं, रोमांच है, पुलक और अश्रुच है, देखो। इससे आगे हो रही है कि वेणु के प्रति दोष दृष्टि किसी की नहीं है, भगनियों की अनुकूल बुद्धि है और वृक्ष सब प्रसन्न है, और धन तो हमारा लूटा जा रहा है और सब प्रसन्न है। जड़ वृक्षों में, तलाइयों में और वेणु में इस प्रकार की भावना, यह महाभाव के कारण उत्पन्न हुए उन्माद के कारण है। सारा संसार महाभाग्यवान दिख रहा है गोपियों को कृष्ण के संबंध से। यह एक इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। श्रीधर स्वामी जी अर्थ, हे गोप्य अयम वेणु किम स्म पुण्यम आचरत कृतवान, कथम ज्ञायते, कैसे जानते हो कि इसने पुण्य किया है। जब जस्मा गोपिका नाम एवं भोग्याम सतीमपि दामोदराधर सुधाम स्वयं स्वातंत्र श्रेष्ठम भूत, कथम किस तरह की रहा है, क्रिया विशेषण पर प्रश्न किया गया, कितना पीता है, कैसे पीता है, क्या करता है, तो कहती है अवशिष्ट रसम, केवलम अवशिष्टम रस मात्रम यथा भवति तथा भूते, इतना पीता है कि बस नाम मात्र का रस बचता है, बस सुधा तो पी जाता है, रस भर बचता है, सुधा में और रस में अंतर, नाम मात्र रस बचता है। जतो जासम, जतो जासम इसकी पहचान क्या है, जतो जासम हरदिनी नाम पैसा पुष्ट, जिनके जल से यह पुष्ट हुआ है वेणु, तब मातृतुल्य हृदयनिया, माता के भाव रखने वाली वो हृदयनिया हिर्षत त्वच विकसित कमल वन मिशेण रोमांचिता, विकसित कमल वन मिशेण, अरे ये सखी बहाना है, बहाना है कि कमल खिले हुए हैं, ये रोमांचिता है, ये देखो सब तलाइयों में सब हृदयनियों में रोमांच हुआ है, और इसलिए कि इनके जल से पुष्ट हुआ है, तो इनकी भावना है कि मेरा पुत्र कृष्ण का भक्त हो गया, ऐसा भक्त कि कृष्ण के अधर पर अधिकार रखे, हमारे जल से पुष्ट हुआ है इसलिए वो रोमांचिता है। अच्छा, जेसम वंशे जाता के तरव मधुधारा मिश्र आनंदाश्रु मुंश, जिनके वंश में यह वेणु उत्पन्न हुआ है, ये तरुगण मधुधारा बहाने के बहाने आनंदाश्रु बहा रहे, जथा आर्ज कुलवृद्ध स्ववंशे भगवत सेवकम दृष्टवा हृष्य त्वचो अश्रु मुंचंती तद्वती। जैसे महान पुरुष शुद्ध वंश वाले जब देखते हैं कि उनके वंश में कोई भगवत सेवक जन्म लिया, कृष्ण का भक्त हुआ, तो लोग आनंद में आंसू बहा, और सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, हमारे वंश में ऐसा शुद्ध कृष्ण भक्त जन्म लिया। ये सब वेणु के भाग्य से अपने को भी धन्य मान रहे हैं। इस प्रकार श्रीधर स्वामी जी ये संक्षेप में आपको लिखे, चरण चिन्ह पर चलते हुए अन्य आचार्य गण लिखते हैं, और इन्हीं के चरण चिन्ह पर चलते हुए अन्य आचार्य गण लिखते हैं। देखिए श्रीधर सनातन गोस्वामी जी लिखते अन्य अनुरागिणी अयम वेणु किं कुसुमं आचरत, अयम काट करते हैं कृष्ण करस्थ, अयम शब्द का अर्थ यह वेणु, यह वेणु कोई कहेगा तो वेणु को देख कर बोलेगा कहाँ है वो वेणु, अपने पास तो है नहीं, ये बोल रहे हैं ब्रज में और श्री कृष्ण है वन में, तो अयम का यहाँ क्या अर्थ है, अयम का अर्थ है कृष्ण के कर्म, अयम इतना निकट पहुंच चुकी है भाव द्वारा लगता है कृष्ण के बिल्कुल बगल में है और कह रहे हैं यह बेंगलुरु। जब मन से कृष्ण लीला का चिंता अयम वेणु यह वेणु किम कुशलम पुण्यम आचरत कृतवान, किम का क्या हाथ क्या पुण्य किया, यह प्रश्न भी हो सकता है और किम का अर्थ है अनिर्वाच्यम। अभी सखी इस वेणु ने ऐसा पुण्य किया है जिसे वचन में नहीं बांधा जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इसका भाव यह भी है कि इसने कुछ पुण्य नहीं किया फिर भी इसका साहस देखा। किसी सखी ने पूछा कैसे कहती हो कि पुण्य नहीं किया है, राधा रानी कहते हैं कि पुण्य किया होता पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, अगर उस जन्म में पुण्य किया होता तो बांस में जन्म लेता, कुछ पुण्य नहीं किया। इसका यह अर्थ है कि मैं कुशलम आचरत न किमपि, जो कुछ पुण्य नहीं किया। अथवा दूसरा भाव यह है सखी हे गोपियों पता लगाओ कि इसने क्या पुण्य किया है तो मैं भी वैसा पुण्य करूंगी, मैं भी वैसा पाप करूंगी जिससे मुझे कृष्ण का अर्धामृत प्राप्त हो। यद्यपि प्रत्येक रात्रि में या दिन में भी राधा रानी को स्वाभाविक सहज सुलभ है कृष्ण का अर्धामृत, परंतु प्रेम का यह स्वभाव है सर्वदा अतृप्ति का बोध होता है, इसलिए वेणु के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं और अपने को ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमको कभी भी कृष्ण का अर्धामृत नहीं मिला। इन्यो का अर्थ नद्य सरस्यो वा हृदय, नदियां या सरोवरियां, सरस्य वृक्षाद्या अपि जत्र भगवद अनुराग में अस्पत्र किम चेतना अनुराग वार्ता है, जहां पर वृक्ष तक भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं और चेतन पदार्थ वहां चेतनों की क्या बात कही जा सकती है, और चेतन का ऐसा अनुराग कृष्ण के साथ हो सकता है तो फिर सचेतन के विषय में क्या कहें, क्या वार्ता। गोपिका नाम स्वत्वम अगर सुधारा ही गोपिका नाम अस्माकम एव स्वत्वम, कृष्ण के अधरामृत पर हम गोपियों का अधिकार है, क्यों कृष्ण से गोप जातित्वात् नित्य रात्रौ अस्माभि सम्भुज मानत्वादिति मनसि, मतलब एक तो कृष्ण गोप जाति के हैं और हम हैं गोपी, इसलिए कृष्ण के अधर सुधा पर हमारा अधिकार है। इस पर प्रश्न होगा केवल एक जाति होने से ही अधिकार हो जाता है, तो राधारानी मन में कहती है नित्यम रात्रौ अस्माभि सम्भुज्य मानत्वात्, पर प्रति रात्रि में हम उस अधरामृत को पीते हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई संपत्ति किसी की हो लेकिन उसका अधिकार न हो, दखल न हो, लेकिन राधारानी कहती है वो हमारा है और अधिकार भी है, प्रति रजनी में इसका अनुभव। नित्यम रात्र अस्माभि सम्भुज मानत्व वेणुस्तु द्विजातीय, वेणु द्विजातीय है, हमारी जाति का नहीं, एक तो यह मनुष्य नहीं है, पशु भी नहीं है, यह वृक्ष जातीय है, वेणुस्तु द्विजातीय है, परंतु कृष्ण रमितत्व आत्मनो कृष्ण प्रेषित्वाभिमानम भक्त, परंतु कृष्ण इसके साथ रम रहे हैं और कृष्ण के आधार पर यह रम रहा है, इसलिए पुरुष होते हुए भी अपने को कृष्ण प्रेयसी मान रहा है। अरे वो काहे को मानने जाए प्रेयसी, बेचारा वेणु है लेकिन अपने मन के भाव का आरोप उस बांस पर कर रहे हैं, यह अपने को कृष्ण प्रेयसी का अभिमान रखता है और वो भी पौरुष से नहीं है, धृष्टता से अधिकार से बाहर पौरुष किया होता, मेहनत किया होता, दूसरी बात से धृष्टता से धार्ष्ट्यम आविष्कृत्य भूंकते तत्रापि परकीयम धनम तत्रापि स्वयं एवं, एक तो दूसरे का धन, हम लोगों का धन, और वह भी स्वयं एवं न तो अन्यम जन्म कमति संगीनम करोती, किसी भी व्यक्ति को साथ में आज तक नहीं लिया। कृष्ण का धरामृत अकेले पी रहा है और तथापि चौर जेण न चौर जेण, वो भी चोरी से नहीं पी रहा है किंतु धन स्वामिनी असमान फुतकारे ज्ञात लिप्तवा, और फुतकार से हंकार से बोल बोल करके हमको बता करके पी रहा है। चोरी से पीता तो वो भी सहन हो जाता, बोल बोल करके पी रहा है, हम कैसे सहें। अयम का अर्थ है अस्माभिः दृश्यमानं अथवा कृष्ण करस्थ नीरस दारुमय वेणु किं कत्मक पुण्यं कृतवान् अस्मिन् जन्मनि पूर्वस्मिन् वा तत्पुण्ये ज्ञाते सति वयमपि तदर्थं जतामहे तिला। पता लगाओ किसी ज्योतिषी से पूछ करके जैसे तैसे कि इस बांस में इस वेणु ने क्या पुण्य किया था इस जन्म में या पहले जन्म में, हमको पता लग जाएगा तो हम भी ऐसा ही तप करेंगे। तब पुण्य ज्ञाते सती वयम अपनी तदर्थ हम जता में है, हम भी जत्न करेंगे, हम लोग भी जत्न करेंगे। स्वयति विस्मय, स्व शब्द विस्मय कहते हैं, क्या पुण्य किया था या किसका साहस देखो, ये विस्मय हो रहा है। स्व शब्द विस्मय तलिंगम आह, वेणु ने पुण्य किया है इसका इसकी क्या पहचान है, तो दामोदर इत्यादि ना दामोदर आदर सुधाम भूखते दामोदर शब्द देना। अब दामोदर शब्द क्यों दिया गया है यह सुनिए, दामोदर शब्द देना निज जुथे सर्जा प्रेम विशेषण आत्मवश्यता बोधयन्ति। गोपियां कह रही हैं कि हमारे जूथ की जो अभिस्वरी है श्री राधिका, श्री राधा के प्रेम पाश में कृष्ण बांधे गए हैं, उनके उदर में राधा रानी ने फूल की माला बांधा था, उसके वश में भगवान हो गए दामोदर को। तो जो श्री कृष्ण राधा के वश में है या हम लोगों के वश में है, उनके अधर सुधा को यह वेणु पी रहा है, उनको अपने वश में कर, यह भाव है। राधा दामोदर हो द्वंद्व, राधा दामोदर द्वंद्व। वृंदावन लीला में भगवान की यह एक विशेष छवि है राधा दामोदर, ऐसे माँ यशोदा ने कृष्ण के उदर में दाम बांधा था, इसलिए भी उनका नाम दामोदर प्रसिद्ध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण इससे बहुत चिंतित थे, कोई भी बच्चा इनको जब चिढ़ाना चाहता था तो कहता था ए दामोदर, दामोदर मतलब मटका फोड़े थे माँ ने बांधा था, तो कृष्ण इसको पसंद नहीं करते। गीता से उन्हें बड़ा आनंद आता था, लेकिन दामोदर कहने का मतलब चोरी करने वाला, मटका फोड़ने वाला, माँ ने बांध दिया था ऐसे। इस दामोदर शब्द से कृष्ण की शैतानी का बोध होता है। तो राधा दामोदर का अर्थ दूसरा है, राधा रानी के द्वारा जिनके उदर में दाम बांधा गया प्रेम के बस। तो श्री गोपी जनों का भाव यह है कि जो श्री कृष्ण हमारे इतने बस में है कि हमारे द्वारा उदर में रस्सी स्वीकार किए, फूल की माला स्वीकार किए, वे बहुत सरल है, हमारे प्रियतम बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन जब से इस खल का संग हुआ इनका स्वभाव बदल गया है, ऐसे कहती हैं। कोई कोई गोपी कहते हैं यार भी नहीं सकी, वेणु का क्या दोष है, सजनी नखते सिखते हरि खोते, ये कृष्ण नख से सिख तक खोते हैं बुढ़िया, वेणु का क्या दोष है। परंतु इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि सब वेणु का दोष नहीं, तो ये तो दामोदर प्रेम बस में, प्रेम के बस में रहते हैं। वेणु के सामने से भले इनकी मति बदल गई है, लेकिन ये तो है दामोदर, और ऐसे दामोदर के अधर सुधा को वेणु पी रहा है। अतएव गोपिका नाम भोग्यम, अरे गोपिकाओं का भोग्य है। गोपिका नाम अति बस इतना ही कहा गया है, गोपिकाओं का धान, गोपिकाओं का भोग, ये बात नहीं कही गई है, इतना ही काफी है। गोपिकाओं का यह अधर सुधा के साथ भी जुड़ सकता है और दामोदर के साथ भी जुड़ सकता है। गोपिकाओं के दामोदर का अधर सुधा अथवा गोपिकाओं का अधर सुधा, कहने का ऐसा है कि दामोदर हमारे हैं, न किस वेणु के। दामोदर का अधरामृत हमारा स्वत्व है, हमारा धन है, और इसको यह पी रहा है। अयमिति पुंसत्व निर्देश, पुंस्त निर्देश तस्य तद्भोगा योग्य पक्ता। अयम शब्द कह रहे हैं, और वेणु, वेणु ऐसे भी पुलिंग, और अयम शब्द भी पुलिंग है, स्त्रीलिंग होता तो इयम रहता है। आयम कहकर पुरुष कह रहे हैं, तो एक पुरुष का कोई अधिकार नहीं है किसी पुरुष के अधर अधरामृत को पीने, तो स्त्री का अधिकार है यह कहने का भाव। और इसी पर गोपी का नाम कहते हैं, हम गोपियों का अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है, तथापि भोगते हैं। और तदेको पर भोग्य कत्व में सदा पीबती, और ऐसा पी रहा है, ऐसा पी रहा है, इसको चाहिए था कि थोड़ा सा पी लेता और बाद में कुछ महाप्रसाद भात रोटी आदि खाता, यह बिल्कुल नहीं कर रहा है। कभी माखन नहीं खाता, दूध नहीं पीता, केवल अधरामृत को पीने पर पड़ा है, और कहता है कि मैं तो बस इसी तरह से उपवास कर रहा है, एकमात्र वही भोग रहा है। तस्य तद अन्य भोग दर्शन, क्योंकि वेणु कभी अन्य रस भी पिया है ये हम नहीं देखते हैं। जब पीता है तो कृष्ण का अधर्म पीता है, यह उसकी धीष्टता है। अनु दामोदर आधर तद भोग नंत्र अति सरसर दृश्य थे नति शुष्क सत्ता। कुछ सखियों ने कहा कि हे सखियों, दामोदर का अधर तो वेणु के भोगने के बाद भी सरस ही रहता है, तो रस बना रहता है, क्यों जल रही हो। सरसा एवं दृश्य तो सरस ही देखा जाता है, न तो शुष्क, अभी सूखता नहीं। तब कहती हूँ जब सुधाम भुक्तैव केवलम द्रव मात्रम अवशिष्यत, हाँ रस देखने में लगता है, लेकिन सुधा तो पी जाता है, अमृत पी जाता है, केवल रस द्रव में थोड़ा पानी भर रहा जाता है, पी जाता है। हे गोप्य इति तस्मा वेणु जन्म नहीं व सौभाग्य। अगर हे गोप्य, हे गोपियों, कहने का भाव ये है कि सखियों वेणु का जन्म ही सौभाग्य का जन्म है, गोपियों में जन्म लेना गलत। जैसे कहा जाता है कि गोप्य गोपियों, अरे क्या गोपी बन, गोपी में जन्म लेना सब गलत, अच्छा होता कि वेणु में जन्म लिया। तस्मात वेणु जन्मना एवं सौभाग्य, न तो गोपी जन्मना इति भाव। कुतो यूयम गोप्य भूता इति भाव, तुम लोग कैसे गोपी हो गई और कैसे सहन कर रही हो गोपी होकर। अस्मातम इति वक्तव्य गोपिकानां इति, कहना चाहिए था अस्माकम, क्योंकि श्री गोपिया रुचि ये भी गोपियां ही बोल रही है, तो अस्माकम ये हमारा धन है ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन गोपिकानां कह रही है, तो इसका भाव है गोपी जात्यैव तद् भोग तद् जो भोग्यत्व सिद्ध है, क्योंकि गोपी होने पर ही कृष्ण का अधरामृत मिल सकता है। तो श्री जी तो आज तक तप कर रही हैं चरण रज पाने के लिए, लेकिन उनको नहीं, क्योंकि गोपियों का अधिकार है गोप कृष्ण का, और वैकुंठ में द्वारका में अन्य भाव वाली स्त्रियों को कृष्ण मिल सकते हैं, लेकिन ब्रज में गोपियों के रहे हैं क्योंकि गोपा भिना है, इसीलिए गोपिका नाम कर रहे हैं, अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो अस्माकम भी कह सकते थे हम गोपी, हम लोगों का धन है, लेकिन गोपिका नाम कहकर के उस अग्रामी पर अपना अधिकार बरकरार रखते हुए कर गोपिका नाम। निजाभिमान विशेषा वैदग्धिवत विशेषा च, गोपी होने पर ही इस प्रकार का सौभाग्य सिद्ध है और कृष्ण का धर्म मिल सकता है। जिस भाव से उस अधरामी पर हमारा अधिकार है, इस भाव से अथवा वैदग्धि रस विशेष से इस बात को कह रहे हैं गोपी का नाम। श्लेषेण तबे कस्य अयो अध्यादि रक्षिकार इति भाव, गोपी का अर्थ है रक्षा करने वाली, जिसे गोपन शब्द का अर्थ रक्षा करना। तो गोपिका का भाव यह है कि सखी, इसमें से अर्थ है कि आज तक हम लोगों ने अपने देह की रक्षा किया है इसी आशा से कृष्ण का धनामृत हमें मिलेगा, हम कृष्ण की दासी बनेंगे, देह की रक्षा कर रही है और सब रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये रक्षा आदि करना तो सब व्यर्थ हो गया। ये गोपी शब्द से ध्वनित अन्यतः व्यंजित प्रमेवा श्रीका सनातन शंकर अन्य बातें तो श्रीका श्रीधर स्वामी द्वारा आदि व्यंजित है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अथवा गोपिका नाम एवं वस्य स्वामी यो दामोदर तस्य करे हृदय वदने तो सदा वर्त करना, ठीक है। कृष्ण हम गोपियों के हैं, गोपिका नाम एवं वस्य स्वामी वा, चाहे श्री कृष्ण हमारे बस में हो या चाहे हमारे स्वामी हो, कृष्ण हमारे यो दामोदर तस्य ऐसे दामोदर के करे कर में हृदय, हृदय में वदन में मुख में सदा वर्तता मानी रहे, हमें इसके लिए कोई चिंता नहीं है। कृष्ण के हाथ में रहे, हृदय में रहे, बदन में रहे, लेकिन अधर सुधाम की स्वयं जुस्मत सम्मति विनय भूलते इति मम दुख, रहे कृष्ण के हाथ में बदन में या हृदय में, लेकिन अधर सुधा पी रही है और स्वयं जुस्मत सम्मति विनय, तुम लोगों की अनुज्ञा के बिना है, सम्मति के बिना है, इन्हें स्वयं रस स्वयं शब्द आया है। ये इसने पूछा होता तो हम लोग कह सकते थे ठीक है 10 मिनट 5 मिनट की तो वृंदावन में सदा 10-10 घंटा और ब्रज में भी आकर के खिड़क में जहां तहां सर्वदा तो अनुमति नहीं देते, और शायद इसी में सोचा कि ये लोग अनुमति नहीं देंगे इसलिए स्वयं तो हम पी रहे हैं, देखो क्या करते हैं। जुस्मत सम्मति विनय वो भूखते, यह भी कहना चाहिए था कि अस्मत सम्मति विनय वह गोपिका ना, जैसे पहले अस्माकम कहा गया तो डायरेक्ट स्वयं अपने परिवार में पढ़ करके गोपियों को इसलिए कहा जा रहा है गोपिका नाम कि सब गोपियों को ये खोना चाहिए और किसी भी तरह से बांसुरी के अत्याचार से मुक्ति होनी चाहिए, इसके इस दुस्साहस को रोकना है, गोपियों में एकता लाने के लिए आंदोलन हो रहा है बांसुरी के विरुद्ध में, इसमें बहुत सता है। तो जुस्मत सम्मति बिना ही वो भूखते, तुम लोगों की सम्मति के बिना ही भोग रहा है। अवशब अवशिष्ट रसम, अवशिष्ट का होता है उत्शिष्ट उच्छिष्ट, अवशिष्ट शिष्ट का है बच्चा व्रत, और अवशब्द संस्कृत में हीनार्थ में प्रयोग होता है, जैसे मान शब्द है तो उसमें अव अवमान तो वो अच्छा नहीं है, मान के विरुद्ध है, तो इसमें हीनार्थ ये भाव कह रही हैं। अवैति औरतादिवत हीनार्थ, जैसे कोई रक्त है और उसमें लगाया जाए रक्त का अर्थ है अनुरक्त असक्त अवरक्त, तो अवरक्त का अर्थ भी रक्त हुआ लेकिन हीन अर्थ में हुआ, तो और औरतान्यधीन अर्थ है और हीनम सिस्टम जस्य रसस्य तथा भूतम देता है। रस छोड़ता है देह में लेकिन और सिस्टम हीन रस छोड़ता है। असली सुधा में रस पी जाता है और बाद में जूस छोड़ देता है, थोड़ा सा छोड़ता है, मात्रा भी कम और क्वालिटी भी बिल्कुल पतला है, दोनों तरह से ही कर। रस मात्रम अपि न अवशेषयति इति अर्थ, या बिल्कुल रस मात्र ही नहीं छोड़ता है यह अर्थ, अथवा अवशिष्ट रस राग तथा रागस अवशिष्टत्व न कदाचित अपि वीर में, अथवा अवशिष्ट रसो रागो जथा से, अथवा श्री कृष्ण के अधर का राग कभी सदा अवशिष्ट रहता है, बचा रहता है, इसका एक अभी एक अभी अर्थ होती है, हमेशा बचा रहता है, इसके पीने के बाद भी बचा रहता है, इसीलिए लगातार पीता रहता है। श्री कृष्ण का अधरामृत ऐसा है कि हमेशा अवशिष्ट रहता है, बचा रहता है, इसी से न कदाचित अभी विरमित, कभी भी विरत नहीं होता है, ग्रहण हमेशा पीता रहता है। तो पीने पर मान लीजिए अवशिष्ट हो जाए, बच समाप्त हो जाए, तब तो ये पीता ही रहेगा, हमेशा बचा रहता है, और इसीलिए नहीं विरमत होता है, किंतु मुहर भोग क्षेत्र हमेशा भोगता रहता है। जदवा सुधा कथम होता, कैसी सुधा, गोपिकाना अवशिष्टो यो रसस तदापेक्षया तद इतरा शेष रस परित्याग तद रूपामपि अलम भूत्या, अथवा गोपिका नाम अवशिष्टो यो रस उस जूठ को पीता रहता है। रात्रि में तो हम लोग पीते हैं, यह भी एक भाव है, गोपिका नाम अवशिष्ट रस यति भूखते, हम लोगों का उत्कृष्ट भोक्ता है, इसका इतना अनुराग है इसमें, यह भी एक अर्थ है, प्रकारांतर से लगाया जाता है। कथम भूतम सुधाम गोपिकानम अवशिष्टो यो रस तदेकापेक्षया, उसी गोपियों के द्वारा छोड़े हुए रस को इतना ही पीना चाहता है, उसकी अपेक्षा से तद इतना शेष रस परित्याग, उस रस के सामने सारे रस को त्याग करके और तब रूपामति अस्मत जुस्मत उच्छिष्टामति भूख, तुम्हारे उच्छिष्ट को भी भोगता रहता है। तत्र रसो नाम प्रत्याख्य रस विशेषत्व की तदात्म्यापेक्षा उपचारे अशुद्धाई व रस किंवा रसनीय मधुर द्रव्य विशेष रही। यहाँ प्रश्न पर सनातन गोस्वामी विचार कर रहे हैं, यह रस का क्या अर्थ है, सुधा शब्द अपने आप में प्रजाप्त है, लेकिन अब इस तरह से कहा गया है, जद अवशिष्ट रसम हृदय भूत, जत अवशिष्ट रसम, जत का अर्थ जिसका या जस्मा अवशिष्ट रसम, अधर सुधा को भोगता है और नीचे बची हुई अधर सुधा न कह करके बचा हुआ रस है, तो दोनों में भेद हो गए। यहां पर अर्थ किया जा रहा है रसनीय मधुर द्रव्य विशेष स्थिति रस, एक द्रव्य विशेष हो तरल पदार्थ और कुछ उसमें वो रसनीय हो, चमत्कार पैदा करे, उसको रस कहते हैं, अथवा इसने पुण्य किया है, इसके एक दूसरे लक्षण को प्रकट करने के लिए बात कही जाती है, जस अवशिष्टम उच्छिष्टम एवं तथापि रसम द्रव मात्र न तो सुधा हृदय स्नान कनादिना जगताम पावन्य सर्वार्थ दस्त श्री जमुनाद्या नद्यों की भूंजते। देवरूप के द्वारा जो कृष्ण का भ्रमित किया जाता है और उसके बाद जो रस मात्र उच्छिष्ट वो छोड़ता है उस रस को जमुना आदि नदियां पीती है। तो प्राय बांसुरी बजा करके और श्री कृष्ण बाद में जाते होंगे, स्नान करते होंगे, पानी लेकर पीते होंगे या नदी में कूला करते होंगे, स्नान करते होंगे। ये भाव आ रहा है कि इसके बाद वेणु की माताएं पीना चालू करती कृष्ण का ध्यान। तो यह इतना कृपण है वेणु कि स्वयं पीता है, बच्चा खुचा अपनी माँ को दे देता है और अपने परिवार के लोग। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और इसके बाद जलावग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं। श्री कृष्ण के अधर का संस्पर्श प्राप्त होता है वेणु को या हृदयों को, इस कारण से ईर्ष्या हो रही है। वेणु से तो ईर्ष्या हो ही रही है और वेणु की माताओं से भी ईर्ष्या हो रही है। जितना भाग्य जमुना आदि नदियों का है या तलैयों का है वैसा सौभाग्य सती हमारा नहीं। स्नान पानादियां जगतम पावन्या हृदय कहते, जमुना या मानसी गंगा आदि नदियां ऐसी हैं कि इनमें कोई स्नान करे, इनके जल का पान करे तो जगत के समस्त जीवों को पवित्र कर देती हैं, सर्वार्थ देती हैं। पर ऐसी पावन नदियां भी वेणु के उच्छिष्ट को पाती है, सारी जगत के पापों को दूर करने वाली है, वे वेणु के उच्छिष्ट को पाती है भक्ति। तो वहां से इसका अर्थ है कि रस है तत्व, तो रस बचा हुआ रस भी इतना महान है कि अगर जमुना आदि नदियां तो उसी में अपना सौभाग्य मानती हैं और इसके बाद रोमांचित होती है उस रस को पाकर। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण बांसुरी बहुत देर तक बजाते हैं और नदियों में अवगाहन कम देर तक करते हैं। कितना गाढ़ अनुराग है कृष्ण के प्रति, कैसा भाव है कि जड़ पदार्थों में भी इस प्रकार का कृष्ण प्रेम देख रही है गोपियां। और वैसे वह भी सत्य ही है, भगवान के अधर का स्पर्श करके, अकर कमल का या संपूर्ण श्री विग्रह का स्पर्श करके नदियों में रोमांच हो रहा है और वेणु के कारण भी रोमांच हो रहा है, ये सत्य है। परंतु अब यह भाव लाने कि ये फुटकार द्वारा बोल बोल करके हमको जना करके और पी रहा है, ये सब तो बेकार है। मतलब ये व्यर्थ कल्पना मात्र है अपने भाव के कारण। हरदिनिया शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी का जी कह रहे हैं कि जगत को पावन करने वाली मानसी गंगा, जमुना या अन्य सरोवरियां या सरोवर जिस रस को पीते हैं वेणु एक दिन नहीं लगातार जूठा करता जा रहा है और उसके रस को ही लगती है और पी करके आनंद के उद्रेक में रोमांचित रहती है, हमेशा कमल खिला रहता है, इसलिए कह रहे कि रोमांचित रहती है। कैसे ये जाने के लिए पी रही है, क्या पता है कि जमुना जो पी रही है अध्यामृत को। तो प्राय यह देखा जाता है कि जल विहार आदिना अधर रागा पगमार, जल विहार जब व्यक्ति कोई करता है, श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो थोड़े काल के लिए अधर भूल जाता है और जो लालिमा राग होता है थोड़े काल के लिए विदा हो जाता है। इसका अर्थ है जमुना आदि में बचा हुआ रस पी लिया, यह भाव। इस तरह से देखी है कृष्ण को खुला करके आए हुए, स्नान करके आए हुए, तो अधर थोड़ा सूखा हुआ है। ज्यादा देर तक स्नान करने पर पानी में रहने पर ऐसा होता है, इसलिए अनुमान करते हैं कि जो वेणु का छोड़ा हुआ थोड़ा रस था वो जमुना आदि में ले और उसी पर इतना भाग्यवती अपने को मान रही। जगत को पावन करने वाली नदियां और वेणु के उच्छिष्ट को ग्रहण करके सौभाग्य मान रही। ऐसे कहा गया साहित्य दर्पण में एक श्लोक है, उसको उद्धृत कर रहे हैं। निःशेष चित चंदनम स्तन तटम निर्मिष्ट रागो धरा, कोई नायिका स्नान की है किसी नदी में सरोवर में, तो वहां यह कहा गया है कि सरोवर में जल ने नायिका के स्तनों के चंदन को हर लिया, और निर्विष्ट रागोध और स्नान करने पर अधर का राग भी निर्विष्ट हो गया। स्नान करने पर ऐसा होता है, कोई ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उसकी श्लोक संख्या भी दी गई है इत्यादि वचनों का काव्यसु अनुमान द्वारा प्रसिद्ध है। काव्य में भी प्रसिद्ध है और ऐसे देखा जाता है अनुमान द्वारा भी। तासम तब भोगे लिंगम ठीक है, यह माना जाएगा कि हृदिनिया देवन के द्वारा छोड़े हुए रस को पीते, क्या पहचान है कि पी रही है, हृदिनियों में कोई लक्षण है, तब कहती हाँ हृष्यक त्वचा, हृष्यक त्वचा इति करवस्त मुनेरा इव तत्तीर्वर्तिनो जगद उपकार परा भगवत स्मृत महात्म्या भुंजत। हृष्यक त्वचा, इससे पता चलता है कि हृदिनिया या जमुना आदि नदियां कृष्ण के अधर रस के अधरा मृत के अवशिष्ट रस को पाई है, क्योंकि उस रस को भोगने के कारण में रोमांच हो रहा है, दिखा करके पाने में रोमांच हो रहा है, उसी रस को पीने के कारण। और तरवस्त और वृक्षों के साथ यही बात है, तरव तरु जिनको जिनकी प्रशंसा स्वयं कृष्ण ने अपने मुख से किया है, भगवान प्रशंसा किए हैं वृक्षों की। आप श्रीमद् भागवतम में देखिए जितनी प्रशंसा भगवान वृक्षों के किए हैं उतना और किसी के नहीं। जगत उपकार परा, जगता जीवन उपकार परा, समस्त जीवों का सहज उपकार करते हैं वृक्ष। जगत का उपकार करने के कारण भगवत सुख महात्म्या, तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध एक भी कण वृक्ष का बेकार नहीं जाता, सब दूसरे के काम में आ जाता। इतनी महिमा वाले जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने किया है, भगवान ने किया है, और जगत उपकार पर ये श्रीकृष्ण सनातन गोस्वामी के मोक्ष से भगवत अस्तुत महात्म्य आया है, लेकिन गोपियों के मोक्ष से भी ये आ सकता है। कृष्ण जिनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, जो जगत उपकार पर आए हैं, तब तीर वर्ती जमुना के तीर पर जिनका जन्म हुआ है या मानसी गंगा आदि के तीर पर जिनका जन्म हुआ है, ऐसे वृक्ष भी भून जाते हैं। प्रथम तो सारा रस 99% तो भोग गया दे, 1% बचा तो उसको तलाइयों ने भोगा, और तलाइयों के तीर पर अपने जड़ से उनका पानी पीते हैं, तो इसके बाद वृक्ष भोग करके ये आनंद ने आशीष हुआ है। इस तरह ही गाय ये अपने को बड़ भागी मान रहे हैं। कैसे पी रहे हैं, पादिष्ट नदी जल पानता, और वह भी अपने पैर से नदी का पानी पी करके इतना आनंद में, जिस नदी के जल में कृष्ण के अधरामृत का बचा हुआ रस मिला है, उसको तो पी करके नदियां प्रसन्न हैं, और उन नदियों के जल को पी करके वृक्ष आनंदाश्रु भरा। कैसे पता है कि ये वृक्ष आनंद में है, तत्र लिंगम पहचान अश्रु मुमुक्षुर अश्रु भरा है, वृक्ष प्रसन्न रहते हैं तो मधु धारा बहती है, मधु के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं या शाखाओं पर मधु धारा निकालते हैं, तो अश्रु मुमुक्षुर अन्यथा तादृश हृष्य तो कसरण मोक्ष कत्वा निपत्ते अनि सखी, अन्यथा दूसरे कारण से इन वृक्षों में ऐसे आनंदाश्रु कभी नहीं निकल सकते हैं, ऐसा रोमांच हो ही नहीं सकता। वृक्षों में मधु धारा हो रही तो अश्रुपात हो रहा है, और इनमें भी रोमांच है, वृक्षों में फूल खिले हुए हैं, फल लगे हुए हैं और बिल्कुल स्तब्ध झुके हुए, ये रोमांचित। तत्र दृष्टांत, किस तरह से वृक्ष सुखी है इसका दृष्टांत दे रही है। आर्जा जथा आर्जा, आर्जा का अर्थ है महांत, महांत जथा श्री भगवद रसानुभवे एव हर्षाद रोमांचिता गलद अश्रु मुचह च भवन्ति न अन्यथा। जितने भी संसार में महान पुरुष हैं, भगवत भक्तगण आचार्यगण वे लोग भगवत रस के अनुभव से ही रोमांचित होते हैं और उनके आंखों से आंसू बहते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। तो वृक्ष को ऐसे ही महात्मा है, महात्माओं के गुरु हैं। अपनी लीला में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात तो कह ही दिया, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के सबको कहा कि वृक्षों को गुरु बनाओ, तरो रिव सहिष्णु, वृक्ष जैसा सहिष्णु बनो। तो वृक्ष को आचार्य के स्थान पर रखा विश्राम और दीनता के लिए तृण, तृण इसे सीखना चाहिए, दीनता और सहिष्णुता वृक्ष। तो ब्रज लीला में भगवान प्रशंसा किए हैं वृक्षों की और चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे, तो वृक्ष ही उनको गुरु मिले सिखाने के लिए। तो इस प्रकार अवश्य महान महान है, तो जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं वो महान नहीं होगा, कौन हो सकता है। तो पहले से परंपरा रही है कि महान पुरुष भगवत रस के अनुभव से ही रोमांचित होते हैं, या आनंदाश्रु बात है। तो यह कहा जाए कि ये बोल तो नहीं रहे हैं, तो इस पर भाव यह है कि वाष्प से गदगद वाणी है, बोला नहीं जा रहा आनंद से, केवल आंसू बहा रहे हैं रोमांचित। कभी कभी महान पुरुषों में ऐसा देखा जाता है कि भगवत रस विशेष का अनुभव करके उनकी वाणी बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, केवल मन लीला में रहता है और वाणी से कुछ उच्चारण नहीं होता है, आंखों में आंसू बहता है, शरीर में रोमांच है। तो जथा आर्जा महान तो श्री भगवत रसानुभवे न एवं हर्षाद रोमांचिता गलदस्त्रु मुचश्च भवंती न अन्यथा इति। जथा जद्वा हृष्यक त्वचा सत्य इति परम दुर्लभ है नाभे न आनंद भरा सूचित, दुर्लभ लाभ मिला है इसलिए हृष्यक त्वचा है। अतो जसो स्थिष्ट द्रव मात्र पानी नापी तासाम ईदृशो हर्ष तस्य पूर्ण महात्म्यं कथम वर्णन इति भाव। तो जिस देवों के उच्छिष्ट रस मात्र का पान करके हृदयों की ये दशा होती है और उसका भी उच्छिष्ट पान करके वृक्षों की ये जब दशा होती है, तो ऐसे महा महापुण्य परिपाक वेणु के सौभाग्य को कौन वर्णन कर सकता है। कितना पुण्य किया होगा, कितना तप किया होगा, इसको कौन कह सकता है। तरवह तु अश्रु मुमुचु तस्य अप्यलाभ है न अशोका और रुदा लिख्य, अथवा अश्रु मुमुचु यह कहा गया है। हृदयों को तो कृष्ण का घृणित मिल जाता है कुछ न कुछ बच्चा, लेकिन वृक्षों को नहीं मिलता, इसलिए बेचारे शोक में रो रहे हैं। अश्रु मुमुचु रो रहे हैं, अथवा दूसरे वृक्ष रो रहे हैं, कृष्ण बांस को ही सौभाग्य दिए और को नहीं, अथवा इसलिए रो रहे हैं। इसमें सब लिखा गया है कि कृष्ण जा करके हृदयों का पानी पीते हैं, तो वृक्ष रोते हैं कि कब हमारा पुष्प लेंगे और हमारा फल खाएंगे, ये भाव इसलिए रोते हैं। ये लाभ उनको नहीं मिलता इसलिए रोते हैं। ऐसे सर्वत्र भगवान अपने हाथ से पुष्प चयन करते हैं और फल भी तोड़ते हैं, प्राय सब जगह खाते चलते हैं। लेकिन यह भी एक भाव हो सकता है कि कभी कभी रोने लगते हैं। अन्य जीवों जैसे जैसे गोपियों जैसा है, गोपों जैसे प्रेम में अतृप्ति का अनुभव वृक्षों का भी होता रहता है, इसलिए सदा चाहते हैं कि कृष्ण हमें संस्पर्श दें, हमारा फल भोगें और ये कृष्ण का अधरामृत हम लें। तो लेते ही हैं नदियों के जल में मिश्रित। किम भूता आर्ज, कैसे आर्ज, वृक्षों को आर्ज से उपमा दी गई। जैसे आर्ज गण भगवत रस के अनुभव से अश्रु बहाते हैं, रोमांचित होते हैं, ऐसे वृक्ष वृक्ष कैसे आर्ज, अथवा आर्जा जता वृक्षों को ही आर्ज कहा गया। छाया बिना जगत उपकारण महंतों की छाया आदि द्वारा, आदि शब्द से फल आदि द्वारा, छाया फल आदि द्वारा जगत के उपकारी हैं, तो ये महान जगत ननु तरुणा तद भोगे कथम अपनी संभावना की नाश। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि वृक्ष आशा करते हैं कि कृष्ण का धराने थने लिए, जो कभी संभावना नहीं हो सकती। वृक्ष कैसे आशा करेंगे, कथम तद अप्राप्त्या रोदनम संभवे, वृक्ष कैसे अभिलाषा कर सकते हैं कृष्ण का धरामृत हमको मिले और फिर नहीं मिलने पर ये रोएंगे कैसे। नहीं रंको राज्य अप्राप्त्या अरोदिति भाव। कोई रंक व्यक्ति कभी साम्राज्य पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता और नहीं मिलने पर रोएगा। कोई भिक्षुक है, भिक्ष मंगा है, कंगाल है, तो उसको कहीं मांगने जाए तो उसकी लालसा भी यही रहती है कि हमको कोई एक दो रुपया देंगे, जिससे कभी दिल्ली का गद्दी हथियाने की इच्छा नहीं होगी, कभी कल्पना ही उसके मन में नहीं होगी। और न मिले तो कोई दुख नहीं उसको। वृक्षों में कैसे संभावना हो सकती है कृष्ण का ध्यान में पाना चाहेंगे और नहीं मिलने पर रोएंगे, यह कैसे संभव है? एक तो प्रश्न है, फिर तभी क्षुधा दिना अन्नाद्यर्थम क्या शंका है? और क्या यह कहा जा सकता है भाई वृक्षों को कोई दूसरा रस नहीं मिलता है इसलिए कृष्ण का ध्यान चाहते हैं? जैसे किसी वृक्ष को भोजन न मिले, पानी न मिले, अथवा जैसे किसी दरिद्र को अन्न भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, तो किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए वो तरस सकता है। तो अन्न और पानी की तरह आवश्यक समझ करके वृक्ष रोते हैं कि कृष्ण के अधरामृत की महिमा को समझ कर रोते हैं? दोनों अंतर है ना, एक व्यक्ति राज्य प्राप्त करने के लिए रो रहा है और दूसरा केवल अपना भोजन मिल जाए इसके लिए रो रहा है। दोनों में बहुत अंतर है, तो किस दृष्टि से रो रहे हैं? तो जहां तक राज्य साम्राज्य की प्राप्ति की बात है, कृष्ण के अधरामृत की महिमा जानकर उसे लेने की इच्छा ये तो वृक्षों में हो ही नहीं सकती। और हो भी जाए तो उनके पास न तो अपना कोई मुख है न हाथ है, वो कैसे पिए और नहीं मिले तो रोए कैसे? तब कहते हैं जथा आर्जा परमार्जा सुधी तधरामृत पान हीना अपि तद प्राप्त्या सुखे माश्रु मन चलती तद। वृक्ष वास्तव में आर्ज, तो जैसे आर्जगण परम भगवत भक्तगण सुधी जिन्हें भगवान का अधरामृत नहीं मिला है फिर भी उसकी अप्राप्ति से उन्हें शोक होता है। शोक करते हैं, ये भी जानते हैं कि हम इस शरीर से और इस स्थिति में कृष्ण का अधरामृत पी नहीं सकते, मिल नहीं सके, फिर भी नहीं मिलने पर शोक का अनुभव करते हैं। इस तरह से वृक्ष कर रहे हैं। जथा जथा अथवा तरल आर्ज सरल बुद्ध अन्य समान अतो अयम गोप्य, इसलिए हे गोपियों, राधा रानी आदि सखियां कह रही हे गोपियों, निभृतम कुत्रा की संगोप्य रक्षण अर्थ है, इस वंशी को चुरा करके और एकांत में रख लिया जाए, यह अब कृष्ण का अधरामृत न पीने का रूप है, यह भाव है। इस पर कृष्णाचार्य ठाकुर ने भी बहुत लिखा है, किंच जस्य स्वजाति संभवस्य देवस्तादृशम सौभाग्यम विश्व सर्वे स्थावर जाते अपि मधु मिश्रण अश्रु मुमुक्षु। हरि सखियों स्थावर जाति में जन्म होने के कारण वेणु के स्वभाव को देख करके समस्त स्थावर जाति मधु के बहाने अश्रु बहा रहे हैं आनंद। तत्र दृष्टांत तथा आर्ज पितर स्वकुल संभवस्य तादृशं सौभाग्यम अनुभूय अश्रु मोचन्ति। जैसे भगवत भक्त गण होते हैं और देखते हैं कि उनके वंश में कोई भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है तो ये लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, रोमांचित होते हैं, आंसू बहाते हैं। यदि अच्छा व्यक्ति होगा, आज होगा, तो उसके वंश में कृष्ण भक्त हो तो बहुत हर्षित होगा। यह एक प्रकार से आर्य की परिभाषा दी गई है। केवल नाम आर्य वक्त होने से ही व्यक्ति आर्य नहीं हो जाता। आर्य का थे कृष्ण भक्त।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
सरल बुद्धि भगवान का आश्रित व्यक्ति। आर्य के वंश में कृष्ण भक्त होते हैं तो ये लोग आनंदाश्रु बहाते हैं, रोमांचित होते। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को आर्य बनना चाहिए। उनके वंश में कोई व्यक्ति भक्त हो रहा है तो बहुत प्रसन्न हो। ईष्य पक्षे, अच्छा ठीक है, ये तो अनुकूल भाव सुगणों के विषय में कहा गया, इसके वंश के सब लोग आनंद में। ईष्य पक्ष में कृष्ण से को ठाकुर कहते हैं तस्मा समाज तादृश कसे कस्य को दोष। अरे सखियों, जो देवरू का सारा समाज ही एक ही ढंग है, ऐसे ही है। कोई भी अपने परिवार में जन्म लिए हुए वेणु के दोषों को नहीं देख रहा है, तो एक का क्या दोष है, वेणु का क्या दोष, सारा समाज ही है। तलैया सौभाग्यवान रहे हैं, सारे वृक्ष करोड़ों करोड़ों इसका भाग्य मान रहे हैं। दोष तो केवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, सब लोग इसके केवल गुण को देख रहे हैं। क्या कहा है, सारा समाज का दोष है, इसका एक कर्ण वेणु का ही दोष नहीं, सारा समाज ऐसा हो गया। चक्रवर्ती कार्य करते हैं किंच नयम फुटकार। और फिर कहते हैं किसी सखी ने कहा कि अरे सखियों, ये कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी में यह कृष्ण की थूक है। दूसरी सखिया कहा अरे नहीं नहीं, ये थूक नहीं है, किंतु स्वसंभोगोत्थम मलितम एव। मलित का संस्कृत होता है डकार। अरे अभ्रामित पी पी करके यह इसकी डकार है, कृष्ण नहीं ठोक रहे हैं। तच अस्मन श्रावित्राय, और भी हम लोगों को सुनाकर डकार आवे तो इतना उच्च डकार नहीं लेना चाहिए। तत्रापि न वशिष्ठम, कुछ भी बचने नहीं देता है रस, किंचि मात्रों की जत्र तत्व था यथा सभी, ऐसा चलाके से भोगता है कि कुछ भी रस बचने नहीं देता है। धन स्वामी अस्मान अस्माकम कृते स्वभुक्ता और सिस्टम की किंचित न रक्षित, हम लोग स्वामी है उस धन की, कृष्ण के अधरामृत की स्वामी हम है, लेकिन हम लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ता। अहो धर्षण की हार, इसकी अद्भुत धृष्टता है। और किंच तब देश वर्ती न सर्व जनस्ता दृष्टा है क्या हो, और इस देश में इस वृंदावन में सभी ऐसे ही हैं। देवरु के जाति के जितने लोग हैं सब ऐसे हैं। न हरदिनियों ने कभी इसको डांटा, न वृक्षों ने डांटा, उनके आनंद के आंसू बहा रहे। तब देशवर्ती न, जिस देश में वेणु का जन्म हुआ है, जिस स्थान में, तो तब देशवर्ती न सर्वे व जन तदृशा, उसी के समान यह जैसे खल है वैसे सारा, इतना दोष भरा है वेणु में, लेकिन कोई वेणु में दोष नहीं देखा। जब जब तो अधर सुधा होगा तम विक्षेप करते भगवत गुणान श्रुतवा अश्रु पुलकादिनम तो भवन की तथा वेणु मृतम सुतृदिन से सत्य स्तर से सखाय दूता है। अरे ये जो नदियां हैं या तलैया हैं, इस वेणु की सखियां हैं, और वृक्ष जो हैं, ये सब इसके सखा है, ये सब इसके सहायक बन रहे हैं, और सब ने मिल करके समाज इकट्ठा करके यही खाना है, क्या हम लोगों से बैर खाना है कि अब गोपियों को कृष्ण का धरामृत एक सीकर भी नहीं सुलभ होने देंगे हम लोग। सब लोग बेड़ू को आगे बढ़ा करके और इस तरह से उत्साहित कर रहे हैं। अतो अयम गोप्य निभृतम कुत्रा के रक्षण ये जथा कृष्णा धर्म न प्राप्नोती इतनी असी जा। इस तरह से ये भाव है कि किसी भी तरह से इस वेणु को छिपा करके एकांत में रख दिया जाए जिससे कि ये कृष्ण के अधरांगी को न प्राप्त कर सके। यह असूया नामक संचारी भाव है। संचारी भाव बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, संचरण करता रहता है। असूया बांसुरी के विषय में गोपियां कहती है कुछ पद सुखदास जी के हैं।
अधरस मुरली लोटन लागी
अधरस मुरली लोटन लागी
अधरस मुरली लोटन लागी अधरस मुरली मुरली लोटन लागी अधर रस मुरली लोटन लागी अधर रस मुरली लोटन लागी अधर रस। जारस कोसत ऋतु तप कीना जारस कोसत
ऋतु तप
सोरस पियत सभागी अधर रस मुरली लूटन लागी अधर रस मुरली लूटन लागी अधर रस मुरली लूटन लागी।
तो गोपियां कहती हैं कि जिस रस को पाने के लिए हम लोगों ने 6 ऋतुओं में तप किया, कात्यायनी की पूजा किया, क्या क्या किया, बहुत दुख सही, घर का लांछन सही, सास ससुर के पति की उलाहना सही और सब सही, जिस रस के लिए हमने सालों भर तप किया 6 ऋतुओं में, उस रस को यह सौभाग्य सौभाग्यवती बांसुरी पी रही, मुरली पी रही।
जा रस को सत ऋतु तप कीना जा रस को सत
ऋतु तप कीना
जा रस को सत ऋतु तप कीना जा रस को सत
ऋतु तप कीना
सो रस पियत सभागी अधर रस सौरस पियत सभागी अधर रस मुरली लोटन लागी अधर रस मुरली लोटन लागी अधर रस। कहाँ रही कहाँ रही कहाँ तई है आई कहाँ रही
कहाँ थी और कौन इसको बुलाया, कहाँ रही कहते ही है आई, कहाँ रही कहाँ से आई है, कौन इसको बुलाया यहाँ,
कहाँ रही कहते ही है आई, कहाँ रही कहाँ कृत भई कहती ब्रजवासिनी कृत भई यह तो भली नयाई अधर रस यह तो भली सावधान क्या हो तो नहीं तुम सावधान
अब क्यों नहीं सावधान हो रही है इसको किसी तरह चुराओ या कुछ खाच कर जमुने में फेंक दो या सारे बांस में आग लगाओ और बांस ना बढ़ने का
सावधान क्या होत नहीं तुम सावधान उठो जी गुरी बलाई सूरदास प्रभु तीन सौ तब जाई अधर रस तीन सौ तब जाई अधर रस मुरली लोचन लागू अधर रस मुरली लोचन लागू अधर रस
सूरदास जी कहते हैं अथवा गोपियां कहती हैं कि सूरदास के प्रभु हम पर सौत ला दिए वो भी बजा करके बाजा बजा कर चुपके साथ लाए होते तो बजाई का तो समाज में जैसे ढोल बजाकर विवाह होता है बैंड बाजा ढीले करके वैसे जगत को जमा करके हमारे सिर पर सौत ला दिए
सूरदास प्रभु हम पर सूरदास
उसको मुरली को
सूरदास प्रभु हम पर ताको सूरदास प्रभु तीनो सौ तब जाई अधर रस तीनो सौ तब जाई अधर रस तीनों लाई अधर रस
पांच पर कोई जैसा आपने सुना कोई कोई सखी कहती है कि अरे सखी बेलू का दोष नहीं है सब कृष्ण का दोष हम लोगों ने इतना प्रेम किया लेकिन इसको भूल गए और नई नई ये बहू लाए हैं इसे इतना प्रेम करने कोई कहते अरे श्याम सदा से ऐसे ही है तुम नहीं जानती हो उनको
सजनी सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई
ऐसे शब्द बहुत ही बुरा लगता है समाज में आप किसी के बारे में बात कीजिए और कोई कहे कि आप उनको जानते हैं तो ऐसे ही मतलब है ऐसे में सारी बुराई आ गई बस ऐसे ही है
सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी एक अंग की प्रीति हमारी एक अंग की प्रीति हमारी
हमारी जो उनके प्रति प्रीति है एक अंग की है मतलब अनंग अखंड अखंड प्रीति है हमारी लेकिन वे जैसे के तैसे
एक अंग की प्रीति हमारी एक रंग की प्रीति हमारी ले जैसे के तैसे सजनी ले जैसे के सजनी श्याम सदा
तो उदाहरण देती है कैसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है दूसरा प्रेम नहीं करता है। जो चकोर चंदा को चाहे जो चकोर चंदा ने कन मान चंदा ने जैसे पृथ्वी पर रहने वाला चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है लेकिन चंद्रमा कुछ नहीं प्रेम की कीमत करता है। इस तरह से कृष्ण हमारे प्रेम की कीमत उन्होंने किया नहीं। जो चकोर चंदा को चाहे जो चकोर चंदा ने कन मान सजनी चंदा ने कन मान सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई जल के तीरे मीन तन त्यागे जल के तीरे मिठुरे नहीं जाने मीर मिठुरे नहीं जाने। जैसे मछली जल के तट पर मर जाता है लेकिन पानी बहता हुआ छोड़कर चला जाता है। वो ये नहीं ध्यान रखता कि बेचारी मछली छटपटा रही है मेरे लिए वो पानी बहता जाता है। ये कृष्ण की दशा जल के तीरे मीन तन त्यागे जल के तीरे ताली मत बजाओ जल के तीरे मीन तन त्यागे जल के तीरे मीन तन त्यागे नीर मिथुर नहीं जाने नहीं जाने सजनी श्याम सदा हरि ऐसे सजनी श्याम सदा हरि ऐसे श्याम सदा हरि ऐसे सजनी श्याम सदा हरि ऐसे। और जैसे पतंग आग पर गिर जाता है आग से इतना प्रेम करता है लेकिन आग जला देता है फतंगे के प्रेम की कीमत नहीं करो।
जो पतंग उड़ी पर ज्योति तकी जो पतंग उड़ी पर ज्योति तकी।
अब ये उदाहरण सूरदास जी इसलिए दे रहे हैं गोपियां इसलिए दे रही कि जल मान लीजिए बह जाता है मछली का कुछ नुकसान तो नहीं करता है ना, इसलिए अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं। वो तो पतंग प्रेम करता है आग से आग जला कर उसको राख कर देता है। ये कृष्ण हम लोगों को किया
सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे श्याम सदाई जो पतंग उड़ी पर ज्योति तकी जो पतंग उड़ी पर ज्योति तकी वाके ने कन भाए वाके ने कन भाए सातक रति रति जन्म गवावे सातक रति रति सातक रति रति जन्म गवावे सातक रति रति जल वैदारत खाए सजनी श्याम
होता है समुद्र, ज्यादा वर्षा समुद्र में होती है, तो चातक एक बूंद पानी के लिए रट 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 के मर जाता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन बादल सारा पानी समुद्र में देता है, चातक के चोंच में नहीं देता है। तो हम मर गए तपस्या करके अधरामृत के लिए और सारा अधरामृत बांसुरी को दे रहे हैं, ये कृष्ण की दशा। चातक रटी रटी जन्म गवावे,
चातक रटी रटी जन्म गवावे,
जलवे दारत खाए सजनी, जलवे दारत खाए सजनी, श्याम सदाई ऐसे सजनी, श्याम सदाई सजनी। तो निर्दयी है ही शुरू से, जन्म से ही, और जब से बांसुरी मिली है ये महानिर्दयी, तब से दोनों बहुत उत्पात कर रहे हैं। उन्हों ते निर्दयी बड़ी है, उन्हों ते निर्दयी बड़ी है, कैसे मुरली पाई सजनी, कैसे मुरली पाई सजनी, कैसे मुरली पाई श्याम जय शीतल शिव, सूर श्याम जय शीतल शिव, सूर श्याम जय शीतल शिव, सूर श्याम जय शीतल शिव, बलि बनी जब माई सजनी, सदाई ऐसे सजनी, श्याम सदाई ऐसे सजनी, श्याम सदाई ऐसे सजनी, श्याम सदाई ऐसे सजनी, श्याम सदाई ऐसे। सदा से कृष्ण ऐसे ही है। सजनी नख सिखते हरि खोटे, सजनी नख सिखते हरि खोटे, सजनी सात पर सजनी नख सिखते हरि खोटे, सजनी नख सिखते हरि खोटे, ये नख से पैर से लेकर के और चोटी तक बिल्कुल बुराई से भरे हैं कृष्ण, इनमें दोष ही दोष है। और ये गुण हम तभी से जानती हूँ जब माँ यशोदा छोटे कहती, बलराम जी बड़े थे इसलिए माँ यशोदा इनको छोटू या छोटे कहा करती थी, आज भी छोटे लड़के को छोटू छोटे कहते हैं। ये गुण तो बही ते जानती हम, ये गुण तो बही ते जानती हम, जब जननी कह छोटे सजनी, जब जननी कह छोटे सजनी, नख सिखते हरि खोटे सजनी, सजनी नख सिखते हरि खोटे सजनी, नख सिखते हरि खोटे। क्या क्या खोटापन है, जाकर जमुना के तट पर हमारा वस्त्र चुराए थे, वही कृष्ण है ना। अंबर हरे जाई जमुना तट, अंबर हरे जाई जमुना तट, अंबर हरे जाई जमुना
राखे कदम चढ़ाई सजनी, राखे कदम चढ़ाई सजनी, सबके चरित सब जानती हो, सबके चरित नीलज बनाई सजनी, हरि खोते सजनी, सिखते हरि खोते, जप जब जब हम तप करी करी तन गारो, जब हम तप करी करी तन गारो, अधर सुधारस काज सजनी, अधर सुधारस काज सजनी, सो मुरली निबरे अचवती है, सो मुरली ऐसे है ब्रजराज मुर, ऐसे है ब्रजराज सजनी, सिखते हरि खोते सजनी, हमको यो और को ऐसे, हमको यो रन को ऐसे, मुझरक दीनों दार, मुझरक दीनों दार, सूरई ते पर चतुर कहावत, सूरई ते पर चतुर कहावत, कहा दीजिए धारी सजनी, नख सुखते धारी सजनी, नख सुखते हरि खोते सजनी, सुखते हरि खोते सजनी, ये गुण कभी ते जानती हम, ये गुण कभी ते जानती हम, जब जननी कहे छोटे सजनी, जब जननी कहे छोटे सजनी, हरि खोते सजनी, हरि खोते सजनी, हरि खोते मुरली को नसुकृत फल पाए, 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 अगर सुधा वति मोहन को, अगर सुधाती वति मोहन को, अगर सुधाती वति मोहन को, अगर सुधाती वति मोहन को, सबर कलंक मसाए सुकृत फल पाए, मुरली कौन सुकृत फल पाए, मन कठोर तन कांच प्रगत ही, मन कठोर कांच प्रगत ही, छिद्र विशाल बनाए मुरली, दुख मन कठोर तन गांठ प्रगत ही मन कठोर तन छिद्र विशाल बनाए मुरली छिद्र विशाल बनाए अंतर सुन्न सदा देखियत है अंतर सुन्न निज कुल वंश सुभाए मुरली निज कुल वंश सुभाए मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली
अंतर में शून्य है, कुछ है ही नहीं, खाली खाली है बांसुरी के, और सारा स्वभाव अपने वंश का ग्रहण की है, बांस जैसा बेकार है सुस्त है ऐसा
लघुतायंग नहीं कछ करनी मूरखत न लगाए मूरखत न लगाए सूरदास प्रभु पान परसिनित सूरदास प्रभु पान परसिनित काम देली अधिकाये मुरली काम देली अधिकाये मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली कौन सुकृत फल पाए
जब गोपियां इस तरह से कहती हैं बांसुरी के विषय में बांसुरी में छेद है ये है वो है वो है तो बांसुरी बोलती है गोपियों को जवाब देती है लोग कृष्ण बांसुरी में बोलते हैं बांसुरी जोर से
ग्वालिन तुम कतउर हम दे हूँ ग्वालिन
कृष्ण
ग्वालिन तुम कतउर हम दे ग्वालिन तुम कतउर हम दे
क्यों हमको बुरा भला कह रही हो जाकर के श्याम सुंदर से पूछो कि मैंने क्या क्या तप किया बिना कष्ट के ऐसे नहीं अधर्मित पी रही ये कृष्ण गा रहे हैं
ग्वालिन तुम कतउर हम दे ग्वालिन तुम कतउर हम दे पूछहु जाई श्याम सुंदर को पूछहु जाई श्याम सुंदर को जही दुख जुड़े ये सने हो ग्वालिन जही दुख जुड़े ये सने ग्वालिन तुम कतउर हम दे ग्वालिन तुम कतउर हम दे
अरे ग्वालिनो तुम लोग क्यों मुझे उलाहना दे रही हो क्यों मेरा दुर्गुण गा रही हो जाकर के श्याम सुंदर से पूछो तो बांसुरी बोल रही है जोर से और श्याम सुंदर ही बोल रहे हैं लेकिन बांसुरी की ओर से बोल रहे हैं गोपियां तो जल गई सुनकर के ये बहुत जोर से अभिमान में बोलती है श्याम सुंदर से पूछो कि उनके साथ हमारा स्नेह कितना कष्ट से जुड़ा है कितना तप करके तब संग हुआ जिस दुख जुड़े समय जिस दुख से स्नेह जुड़ा है कृष्ण से वो जाकर उनसे पूछो ग्वालिन तुम कतउ रहन दे
ग्वालिन तुम कतउ रहन दे
पूछहु जाई श्याम सुंदर सो
पूछहु जाई सुंदर सो
जेहि दुख जुड़यो सने हु ग्वालिन जेहि दुख जुड़यो सने कतउ रहन दे ग्वालिन तुम कतउ रहन दे। देखो क्या क्या मैंने दुख सहा। बांसुरी बोल रही है, एक तो जन्म लेते ही मैं अपने परिवार से विरक्त हुई, बांस के कोच से बांस को काट कर अलग किया जाता है, तो इस पर बांसुरी कह रही कि मैं जन्म भूमि ही नहीं त्यागी, अपना वंश भी त्याग दी। पहला मेरा कठिन तप देखो बसरी बनने के लिए,
जन्मत ही ते भई वीरत चित, जन्मत ही ते भई वीरत चित,
सजो गान गुन गे ग्वालिन, सजो गान गुन गे ग्वालिन तुम कतउ रहन दे, कतउ रहन दे। क्या उड़न लेते, मैं जन्म से ही अपने परिवार से अलग हो गई, गांव छोड़ दी, गुण का अर्थ है स्नेह का बंधन परिवार से छोड़ दिया और घर छोड़ दी। इस तरह से क्या तुम लोग अपने घर को छोड़ी हो कृष्ण के लिए? बार बार गाली दे रही हो हमको, हमने तो अपना घर छोड़ दिया कृष्ण के लिए, परिवार छोड़ा, स्नेह छोड़ा, तुमने क्या छोड़ा है? और बात कर रही कम तपस्या हमारी है।
जन्मत ही ते भई वीरत चित, जन्मत ही ते भई वीरत चित,
बांसुरी बजाया जाता है तो जन्म का मतलब है कोमल बांस से बनाया जाता है, ये अर्थ है कि बहुत जल्दी परिवार से अलग हो गई। ये नहीं कि 75 वर्ष का होने के बाद तब वानप्रस्थ लिया।
जन्मत ही ते भई वीरत चित, जन्मत ही ते भई वीरत चित,
सजो गान गुन गे ग्वालिन,
सजो गान गुन गे ग्वालिन
तुम कतउ रहन दे,
कतउ रहन दे ग्वालिन तुम कतउ रहन दे।
मुझे कृष्ण के लिए घर छोड़ना पड़ता है, कम से कम आप लोग जो घर छोड़ कर आए हैं तभी ये कथा मिल रही है, छोड़ने से तो कुछ लाभ होता है।
एक ही पावन रही हूँ ठाड़ी, एक ही पावन
बास अकेले जन्म लेता है, तो जन्मते ही मैंने अपना घर छोड़ दिया, उसका एक भाव ये है कि बास जब ही जन्म लेता है तो अन्य बांसों से अलग रहता है। तो बांसुरी कह रही कि मैं जन्म लेते ही घर छोड़ दी, गांव छोड़ दिया अकेले और एक पैर पर खड़ी रही, तप की हूँ, तब कृष्ण का ग्राम मिला।
एक ही पांव रही हूँ ठाड़ी, एक ही पांव ग्रीष्म ऋतु में हो ग्वालिन, हिम ग्रीष्म ऋतु में ग्वालिन तुम कतउ रहन दे, ग्वालिन तुम कतउ रहन दे।
तो मैं एक पैर पर खड़ी रही और चाहे वो ठंडा का दिन हो, बर्फ गिर रहा हो हिम, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे मेह वर्षा ऋतु हो, वर्षा में खड़ी रही एक पैर पर और गर्मी में खड़ी रही, ठंडा के दिन में खड़ी रही, और इसके साथ इतना ही नहीं, मेरी शाखा काटी गई, शाखा पत्र सब काटा गया, काट करके मुझे साइड दिया गया, मेरे कलेजा में आठ आठ छेद किया गया, तब कृष्ण मिले हैं, ऐसे नहीं मिले, ऐसे बोल रही है। तजय मूल शाखा सुपुत्र सोदय, तजय मूल तजय मूल शाखा सुपुत्र सोदय, तजय बांसुरी बनाने के लिए पहले बांस को सुखाया जाता है, तो मुझे सुखाया गया काम में। तजय मूल सा खास पत्र सब, तजय मूल सा सोच सुखानी दे ग्वालिनी, सोच सुखानी दे ग्वालिनी, तुम कठोर हम दे तजय मूल सा खास पत्र सब, सोच सुखानी दे अग्नि सुना कत मुरयम तन मन, अग्नि सुना कत और जब लोहा लाल लाल करके लाया जा रहा था मेरी छाती में छेद करने के लिए, तो मैं भागी नहीं, मुरी नहीं, छेद किया जाता है बांस में लाल लोहा से। अग्नि सुलाकत मुरयम तन मन, अग्नि सुलाकत मुरयम तन मन, मेरा तन तो भागा ही नहीं, मन में भी नहीं घबराई, छेद करो छेद करो, ठीक है कृष्ण का अधरामित मिलना चाहिए कोई भी कष्ट करके। अग्नि सुलाकत मुरयम तन मन, अग्नि सुलाकत विकट बनावत दे ग्वालिनी, विकट बनावत दे ग्वालिनी, तुम कठोर हम दे ग्वालिनी, तुम कठोर हम दे ग्वालिनी। तो मेरा देह विकट बनाया जा रहा था, आठ आठ जगह छेद किया जाए, पहले धूप में तपाया जाए और आग से छेद किया जाए, बताइए इतना कष्ट सही तन कृष्ण मिले हैं, तो ये केस मुड़ाने में क्या दिक्कत है, जो छाती में छेद में सह गई तो कृष्ण के लिए केस कटाना पड़े तो कौन बड़ी बात है। अग्नि सुलाकत मुरयम तन मन, अग्नि सुलाकत मुरयम तन मन, विकट बनावत दे ग्वालिनी, विकट बनावत दे ग्वालिनी, तुम कठोर हम दे ग्वालिनी, तुम कठोर हम दे ग्वालिनी, तुम कठोर भक्ति कहा बांसुरी कही कही, भक्ति कहा करी करी तामसते हुगाली, करी करी तामसते हुगाली, क्या बक रही हो तुम लोग हमको बांसुरी बांसुरी कहकर, बांसुरी से उपहास रहे बांस की बेटी, बांस की बेटी ऐसा कहा, बांसुरी कह कह करके क्यों भक्त भक रही हो, और करी करी तामस थे, ये तामस का अर्थ क्रोध, क्रोध कर करके क्यों मुझको बुरा बुरा बोल रही हो, हमारे जैसा तुम भी करो और अधर रस ले, तुम भी अधर रस लो तो मर क्यों रही हो, मैं इतना मर गई कृष्ण के लिए, तुम क्यों इतना छेड़ रही हो। भक्ति कहा बांसुरी कही कही, भक्ति कहा ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण बोल रहे हैं बांसुरी के तरफ से, भक्ति कहा बांसुरी कही कही, भक्ति कहा बांसुरी कही कही, करी करी तामसते श्याम सुंदर को इस रीति से रिझा लेती है। तुम भी आकर छेद करो छाती में, हमारे जैसे परिवार छोड़ो, क्यों नहीं श्याम सुंदर मिलेंगे।
भगवान बोल रहे बासुरी में,
सुर श्याम ये भांति रिझे कि नहीं, सुर श्याम ये भांति रिझे कि नहीं, तुमहु अधर रस ले हुआ,
तो सूरदास जी कहते हैं, अथवा सूरदास जी के शब्दों में श्री गोपियां कहती हैं कि श्याम को ही भांति रिझा करके क्यों नहीं तुम भी अधर रस ले रही हो, क्यों मर रही हो हमको देख देख कर।
सुर श्याम ये भांति रिझे कि नहीं, सूरदास तुम हुआ अधर रस ले
कतरू रे हम दे।